शांति, अभी आपके लिए सुनाना तो जैसे सूरज के आगे दिया ऐसे ही लगेगा। आपने अपने जीवन में काफी सालों से योग के प्रयोग बहुत किए हैं, दूसरों को भी सिखाया है, कराया है। जो एक्सपेरिमेंट करता है वो ही एक्सपीरियंस लेता है। तो ऐसे कईयों ने आपके द्वारा एक्सपेरिमेंट भी किए हैं और उसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी पाए हैं। अनेकों को जिससे प्रेरणा मिलती, हिम्मत मिलती, रास्ता मिल जाता। और हमारी पीस ऑफ माइंड में भी हर रोज हम क्लासेस के रूप में भी सुनते हैं, तो समाधान का जो कार्यक्रम आता है प्रश्नों के उत्तर, उसमें भी आपको देखते हैं, सुनते हैं, दूर बैठे भी आज सन्मुख मिलने का, सुनने का मौका मिला है। तो जरूर आप से हम बहुत कुछ शक्तियों को प्राप्त करेंगे। आप दिव्य अस्त्र शस्त्रधारी हो, इसलिए वो दिव्य अस्त्र शस्त्र सभी को प्रदान करेंगे, ऐसा हमारा अनुरोध है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आदरणीय सूरज भाई की जो आज की क्लास है, कौन सी विषय सुनाई थी, बेफिकर बादशाह कैसे बने, बनना इन सबको बेफिकर बादशाह, तो इस पर आप क्लास कराएंगे।
ओम शांति। उत्तर नहीं दिया आपने बहन जी के क्वेश्चन का, बनना है बेफिकर बादशाह, बनना है बादशाह, जो बनेंगे वो बेफिकर हो जाएंगे और जो बेफिकर रहेंगे वो बादशाह बन जाएंगे। काम छोटा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल सहज है, आप भी कह दो बिल्कुल सहज है बन जाएंगे, एक बहुत अच्छी साधना है। पहले मैं पूछना चाहूंगा, नए कौन कौन हैं? 2 साल तक के ज्ञान वाले हाथ उठाएं, 2 साल, अच्छा, 5 साल तक, 10 साल तक, 20, उसके ज्यादा, अच्छा। तो वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है। हम सभी को बाबा एक बहुत सुंदर बात सिखाते हैं, तुम्हारा जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वैल्यूबल लाइफ। जो मनुष्य अपनी लाइफ को स्वयं वैल्यू देता है, सोचना है सभी को, अपनी लाइफ को स्वयं वैल्यू देने वाले बहुत मूल्यवान बन जाते हैं। ये बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी, ये विद्यार्थियों के लिए भी है, लौकिक आपके बच्चे जो स्टूडेंट हैं, जो उनमें से अपने स्टूडेंट लाइफ को बड़ी वैल्यू देते हैं वो बहुत सफल होते हैं, और जो उसे ऐसे ही बिताते हैं वो पछताते हैं। हम अपने जीवन को पूरा महत्व दें, समय को महत्व दें और एक एक संकल्प को महत्व दें। जीवन को महत्व देना माना, एक एक संकल्प को और एक एक सेकंड को महत्व देना। सब चिंतन करेंगे, हम देते हैं। संसार में भी लोग कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति है मन की शक्ति, और आज यही सबसे कमजोर हुई है। मनुष्य सोच सोच कर बहुत कमजोर हुआ है, अनेक लोग सोच सोच कर दुखी हैं, केवल सोच कर। इसलिए पहली चीज होगी अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। सब विचार करेंगे हम कितना निगेटिव हैं जीवन में, कहां कहां हमें पॉजिटिव होने की जरूरत है, अपने लिए, बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए, काम धंधों के लिए, भविष्य के लिए, संगम युग के लिए। बाबा के पाठ को देखकर बहुतों को संशय आते हैं, आप में से भी कईयों को आते होंगे, बड़ा संशय न भी आता हो सोचते तो होंगे पता नहीं क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो हंसी में लोग और कुछ भी कहने लगते हैं, भगवान को आजकल क्या हो गया। नहीं, भगवान को नहीं कुछ हुआ, इनमें कुछ रहस्य है। आप चाहो तो मैं उनके भी उत्तर दे दूं आपको, जो प्रश्न सबके मन में संसार में आजकल उठते हैं। पहले हमें पॉजिटिव होना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज। बीमारी आ गई, पॉजिटिव होना है। देखो, एक व्यक्ति अभी हमसे मिल रहा था, ग्रुप आए हुए हैं ज्ञान सरोवर में, उनका बड़ा कल्चरल ग्रुप, इसने ज्ञान भी नहीं अभी लिया है तो मुझे बता रहा था मुझे हार्ट अटैक हुआ। हॉस्पिटल में ले गए, मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि चलो अधिक से अधिक मृत्यु होती है और क्या, हो जाने दो, नहीं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। कहा मैंने कुछ भी नहीं सोचा और बिल्कुल ठीक हो गया, कुछ ज्यादा झंझट हुआ ही नहीं, न खर्च हुए। बहुतों की ऐसी हमारे ब्राह्मण परिवार में भी सुंदर अनुभव हैं, बहुत हल्के रहते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें भी सहज ठीक हो जाती हैं। हमें संकल्प शक्ति को बहुत बढ़ाना है, इसकी स्पीड को स्लो करना है बेफिक्र बादशाह बनने के लिए। संकल्प की स्पीड को स्लो डाउन। मैं एक संकल्प देता हूं आपको, जो भी आप में से करना चाहें, मनुष्य के मन में नॉर्मल रूप से 25 संकल्प एक मिनट में चलते हैं। अगर आपको गुस्सा आ जाए, कोई टेंशन हो जाए, तो ये स्पीड बढ़ जाती है, 40 तक पहुंच जाती है। इसको हमें धीमा करना है, और इतना धीमा करना है कि सतयुग में जब हम देवता थे जो स्पीड तब थी हमारी वो हो जाए। अंदाज लगा सकते हैं आप सतयुग में हमारे मन की स्पीड है? 5 है? जोर से बोलो बोलो। 1 नहीं, देवता जब हम थे सोचेंगे या नहीं, यानी संकल्प रहेंगे 8 संकल्प पर मिनट एवरेज। 4 से कम तो योगियों की होती है, अल्फा स्टेज। तो हमें अपने मन की स्पीड को धीमा करना है। क्या विधि अपनाएंगे? जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता, विधि अपनाएंगे। 2 विधि अपना लें बस आप, विधि बहुत सारी हैं, स्वमान और ऐसा शरीरीपन। आप 3 दिन ये अभ्यास करके देख सकते हैं, कोई भी स्वमान अभ्यास करो सारा दिन, मैं आत्मा हूँ इस देह से अलग, इतना ही बस, मैं आत्मा हूँ इस देह से अलग, ये देह अलग, मैं अलग, और देखो आपके मन की स्पीड कितनी धीमी होती है। और मन की स्पीड धीमी होने से क्या हो जाएगा, हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाएंगी, हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे, जो हमें अचल अडोल बनने में बहुत मदद करेगी। वर्तमान समय से हजारों गुना भयानक समय आने वाला है हमारे सामने। नेपाल का अभी अभी सबने सुना, टीवी पे भी देखा, जो सुना और टीवी पे देखा उससे हजार गुनी बुरी हालत है वहां, मैं हजार गुनी कह रहा हूं। बहुत सारे गांव इतनी दूर दूर हैं कि वहां जाने में ही 2-2 दिन लगते हैं और वो खत्म ही हो गए, जो बचे उनके पास कुछ नहीं, भूखे ही मर जाएंगे वहां, कोई वहां पहुंचता ही नहीं है। और ये भूकंप अब तेजी से बढ़ते जाएंगे क्योंकि प्रकृति को पूरी तरह परिवर्तित होना है। किसके लिए ये भूकंप होंगे, आपके लिए, लोग सुन ले तो आपको गाली देने लगेंगे, कैसे खतरनाक लोग हैं, इनके लिए भूकंप हो रहे हैं, क्यों आपके लिए क्यों होंगे, सारा जो सतयुग का खजाना है वो जमीन के अंदर है, वो बाहर आएगा। ऊपर की जमीन तो अन्न भी नहीं दे रही, ये नीचे जाएगी, नीचे की ऊपर। मैं हंसी में लोगों को एक बात कहा करता हूँ, जो बहुत मांस खा रहे हैं ना दूसरों का, उनका मांस अब धरती खाएगी, उपजाऊ हो जाएगी उससे। तो भयानक समय आएगा, मैं आपको ऐसे ही नहीं ये बात बता रहा, इसलिए बता रहा हूँ सबको अचल अडोल साक्षी होकर उस खेल को देखना ही पड़ेगा। कोई रोए या परेशान हो उससे वो खेल बदलेगा नहीं, सब कुछ बदलने वाला है। अब हर साल आपदा आने वाली, बड़ी बड़ी आने, हर साल क्या ज्यादा आने लगी, कश्मीर में तो शायद बरसात में हुआ था ना अभी अभी, और ये दूसरी नेपाल में आ गई, और भी कोई आई, उत्तराखंड में आ गई थी, अब जल्दी जल्दी आने लगी ना। और ऐसा समय आएगा कि हर हफ्ते होगा ये खेल, लोग संभल नहीं पाएंगे, छोड़ देंगे, अब जो दब गए भाई, अब छोड़ो, क्या करेंगे, क्योंकि नया नया होता रहेगा। तो सबसे भयानक स्थिति ये होती है कि लोग दब जाते हैं, मरते नहीं, जो मर गए वो सुखी लेकिन मरते नहीं। अब देखो जो अंदर दबा है, सोचो प्यास लगती है, सिर फूटा है, दवाई नहीं है, आंख फूट गई, दवाई नहीं है, मिट्टी में दबे पड़े, हवा भी नहीं लग रही, श्वास नहीं ले रहे, तड़फ रहे हैं, याद भी क्या क्या आ रहा होगा, ये समय बड़ा कष्टकारी होता है। हम सभी को अपने को तैयार करना है आने वाले समय के लिए। डरेंगी माताएं या तैयार करेंगी, कुछ माताएं सोच रही ऐसा होगा क्या, बाबा क्यों नहीं रोक देता इसे, रोकेगा बाबा, वो तो महाकाल है, वो तो इसी काम के लिए आया है, रोकेगा नहीं, हमें उसने कुछ काम दिए हुए हैं जिसके बारे में सभी ब्राह्मणों को जरा जागृत होना चाहिए। उस समय सभी आत्माओं को मदद करना हमारा काम होगा, मदद करना, मदद करनी होगी वाइब्रेशन से। जैसे ये बात हुई कि लोग दब गए अब भी, और दबे हुए हैं, 80 घंटे के बाद कोई निकला, कोई 3 दिन के बाद निकला, कोई बिल्कुल नहीं निकला, अभी भी दबे होंगे, तड़फते होंगे, जिसके जैसे कर्म वैसा इफेक्ट। हम अपने वाइब्रेशंस देकर उन्हें क्या करेंगे, देह से मुक्त। इसको बाबा कहते हैं तुम्हें बनना है मास्टर मुक्तिदाता। और जो जिंदे हैं अति कष्ट में तो वो है ना, जिनके पास न खाने को रहा, न मकान रहा, न काम धंधे रहे, परिवार नहीं रहा, एक दो बच्चा है, दुख तो उनका है ना असली। उन्हें वाइब्रेशंस देखकर धैर्य देना, सहारे देने का अनुभव कराना, ये काम सबको करना है। हम सभी विनाश काल के अपने कार्यों के लिए स्वयं को तैयार करें। जय जयकार भी होने जा रही है, लेकिन एक बात के लिए मैं सभी ब्राह्मणों को सावधान करना चाहता हूँ। बात बुरी है लेकिन बतानी जरूरी है। जैसे सेवा प्रारंभ करने से पहले बाबा ने सबकी अग्नि परीक्षा ली थी, कभी कौन सी थी वो? बैगरी पार्ट, ताकि जो तपी हुई आत्माएं वो रह जाएं, जो कच्चे घड़े हैं वो निकल जाएं। क्योंकि सेवा प्रारंभ करनी थी, उसमें कच्चों से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही अब जय जयकार से पहले समस्त ब्राह्मण परिवार को कुछ कड़ी परीक्षाएं देनी हैं। उसमें बहुतों को संशय उठेगा, बहुत जा सकते हैं। मेरे सामने तो क्लियर विजन है, मैं वो सब नहीं बताऊंगा आपको, पर एक बार क्रिटिकल सिचुएशन से ब्राह्मण परिवार को पास होना है अगले 3 सालों तक ही। फिर जय जयकार होगी, साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगी कुछ आत्माएं, संसार को बहुत कुछ देंगी और विनाश काल में अनेकों को मदद करेंगी। जिन्होंने बहुत अच्छी साधनाएं की, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत पवित्र बनाया, जिन्होंने सेवाओं में बहुत काम किया, वो आदर्श बन जाएंगे। संसार उनसे ही बहुत कुछ लेगा, सीखेगा। कई लोग ऐसे सेवा तो की लेकिन करने से ज्यादा डिस्टर्बेंस किया, साधनाएं नहीं की, इच्छाओं के पीछे भटकते रहे, वो खाली रह जाएंगे। हमें अपने को भरपूर करना है। अब मैं आ जाऊं फिर से वहीं, संकल्प शक्ति बहुत चाहिए। दोनों चीज, संकल्पों की स्पीड धीमी भी और अपने मन में महान संकल्प भी। संकल्प हमारा खजाना है, संकल्प हमारी शक्ति है। एक एक संकल्प मनुष्य को समय पर जीवन दे देता है। एक एक कमजोर संकल्प मनुष्य को निराशा के गर्त में डाल देता है। एक एक संकल्प सोए हुए को जगा देता है और एक एक संकल्प जगे हुए को मूर्छित कर देता है। संकल्पों का बहुत बड़ा खेल है, हमें ध्यान देना है हमारे मन में अच्छे संकल्प हों। कोई संकल्प हमारी खुशी को छीन न रहा हो, कोई संकल्प हमें निराश न करता हो, कोई संकल्प हमें चिंताओं में न डालता हो, प्रैक्टिस करेंगे। बेफिकर बादशाह बनने के लिए जो बाबा का महावाक्य है, हम उस पर ही आ जाएं। जरा याद करो, मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देकर, किसको याद है आगे, फखुर ले लो। मेरापन ही मनुष्य को चिंताओं में डालता है। मेरे को तेरे में बदलना, सब कुछ तेरा। जब ये कहा जाता है सब कुछ तेरा, तो सब क्या सोचते हैं, धन दे देंगे सारा बाबा को। धन तो उसके लिए सबसे छोटी चीज है। भगवान को धन चाहिए, बाबा इस संसार को स्वर्ग बनाकर जाता है। स्वर्ग माना यहाँ हीरे जवाहर रातों की बरसात करा कर जाता है। उसको हमारे 100, 200, 1,00,000, 2,00,000, 1,00,000,000 वो तो कागज है उसके लिए। वो चाहे तो मधुबन के आंगन में हीरो की बरसात करा दे, आप यहाँ से उतरे तो हीरो पे चलें, लेकिन वो ये सब नहीं करता। उसके पास शक्तियां हैं। वो हमसे साधना कराना चाहता है, और साधनाएं बिना त्याग के होती नहीं है। तो मेरे को बदलो, सभी यही बदलो, मेरे बच्चे बदलो, कहने तक या तो बच्चों की चिंताएं किसकी, संकल्प करो। ये बहुत अच्छी तरह इसको समाओ अपने अंदर, क्योंकि माताओं को तो ज्यादा चिंता अपनी बच्चों की होती है। कुछ चिंताएं माताएं थोड़ा ज्यादा करती हैं। 9 साल की बच्ची, एक माता फोन कर रही है 4-5 दिन पर, 9 साल की बच्ची पढ़ने में बहुत डल है, क्या करूं? अरे मैंने कहा बेचारी का इसका, मैंने उसको समझाया, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, सभी थोड़ा ही टॉप क्लास स्टूडेंट होते हैं। अब तुम्हारी बच्ची की बुद्धि कम है, अब तुम उसे जबरदस्ती पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इससे क्या फायदा होगा? वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाएगी, दबाव में रहेगी, उसकी सारी पर्सनैलिटी मर जाएगी, छोड़ दो तुम उसे, और कुछ कर लेगी। पर कहा बिना पढ़ाई आजकल इसका भविष्य क्या होगा, मुझे बहुत चिंता रहती है। मैं कई कई माताओं से पूछ लेता हूँ, तुम कितनी पढ़ी लिखी? कहा हमारे जमाने में तो स्कूल ही नहीं थे गांव में। तो तुम्हारा भविष्य कैसा हुआ भाई? हुआ, माताएं बैठी पढ़ी थी क्या? तो तुम्हारा भविष्य बिगड़ा या भगवान के पास आ गए? अगर पढ़ाई भविष्य बनाती तो पढ़ने लिखने वाले सब युवक बहुत श्रेष्ठ स्थिति में होते, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए संसार का हाल बिगड़ रहा है, अनेक युवकों के फोन आते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं युवक बिना कारण। कितने युवकों ने अभी एग्जाम से पहले फोन किए, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन अब एग्जाम देने को मन नहीं कर रहा है। देखिए ऐसी स्थिति जिसकी कोई दवाई नहीं है, और बहुत फोन आए, और छोटे मोटे स्टूडेंट के नहीं, मैं MBA कर रहा हूँ, मैं CA कर रही हूँ, मेरा MTech का एग्जाम है, जो हायर स्टडी है हमारी। कहा मैं उनसे पूछता हूँ क्यों तैयारी नहीं, डर लग रहा है क्या? नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन बस मन नहीं कर रहा है एग्जाम दें। हम ये भी जानते हैं एग्जाम न देने से 1 साल बेकार होगा, हम ये भी जानते हैं हमारे माँ बाप क्या कहेंगे हमें, पर नहीं इच्छा हो रही, उदास बैठे जैसे, ये डिप्रेशन की शुरुआत हो रही है। मैं आप सभी को ये बात, सारे ब्राह्मण परिवार को कहना चाहता हूँ, सकास की संसार को बहुत जरूरत है। अब से कम 20 साल पहले बाबा ने कहा था, तुम्हारी सकास की संसार को बहुत 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 जरूरत है, 3 बार बोला था। आज वो समय बिल्कुल प्रैक्टिकल आ गया है, बिना हमारी सकास के लोग जी नहीं पाएंगे अब। इसलिए माताओं को मैं पहले कहूंगा, चिंताएं छोड़कर अपने इस महान कार्य में लग जाओ। बाबा की इस बात को सभी रियलाइज करें भाई बहने, ध्यान से सुन लेंगे, अगर हम सकास देते हैं संसार को, लाखों करोड़ों लोगों को मदद मिलती है, तो बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा ना, समझ रहे सब पीछे वाले, बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा रोज, और इस पुण्य से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अंडरलाइन कर लो सभी, प्लान कर लो यहीं से, जीवन को निर्विघ्न जीना है, बाधाओं से मुक्त, न रोग आए तन में, न काम धंधों में बाधाएं आए, न कोई और विघ्न पड़े जीवन में, परिवारों में, सकास देने की सेवा प्रारंभ करो। सब इस पे टाइम दें, आधा आधा घंटा सवेरे शाम, आपके बिजनेस भी बहुत सुंदर चलेंगे, आपके संबंध भी बहुत स्वीट हो जाएंगे, रोग भी नहीं होंगे शरीर में, सकास देने में लग जाओ। ये बाबा के महावाक्य हैं। सकास देने में लग जाओ, तुम्हारे विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। बहुत ध्यान देंगे तो मेरे को तेरे में बदलना है। मेरा कुछ भी नहीं, राजयोग की परिभाषा है बाबा के द्वारा दी गई। राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं, चिंताएं भी मेरी नहीं। हम बहुत अच्छी तरह रियलाइज कर लें, हम भी बहुत बड़े हैं और जो हमारा बाबा है वो तो सबसे बड़ा है, उसके लिए तो ये शब्द भी छोटा है। बाबा हमारी बहुत केयर करता है, फिकर देकर फकुर ले लो इसका अर्थ है। छोटी मोटी बातों की चिंताएं नहीं, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, इस फीलिंग को बढ़ाते चले, इसको जीवन बना दें अपना। जैसे यहाँ देखो, बड़े पद पर पहुंचने के बाद लोग चिंता नहीं करते ना। अभी आपने सुना होगा पंजाब में वो बस कांड हो गया ना, लड़की को और उसकी माँ को फेंक दिया, और वो जो मंत्री हैं वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि मैं सोचता हूँ ऐसे लोग मंत्री हैं तो हमारे देश का क्या हाल होगा। ऐसा लगता है उनके बयान सुन के कि इनको तो बुद्धि नहीं है, कहाँ से इनको मंत्री बना दिया लोगों ने, ऐसे बयान वो देते हैं। तब हाई कोर्ट ने लिया अपने हाथ में केस, कल हाई कोर्ट में अपील हुई, अपील लिया उन्होंने क्योंकि उन्हें तो दबा दिया। और बता रहे थे वो पत्रकार कि उनकी इतनी दादागिरी है, ड्राइवर किसी को भी मार के आगे बढ़ जाते हैं और पुलिस को फोन करते हैं भाई ये मर गया है तुम जरा देख लेना जाके, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। कलयुग का ये तो है खेल, जिनके हाथ में सत्ता है वो बहुत पाप कर रहे हैं। मैं आपको ये बात इसलिए सुनाई, कितने अहंकार में रहते हैं लोग, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, चीफ मिनिस्टर खुद हैं, उनके बच्चे सोचते हैं चीफ मिनिस्टर तो पापा है पर उससे बड़े प्राइम मिनिस्टर तो हम हैं, सोचते हैं नहीं, नशे में रहते हैं। हम जरा याद करें कौन हमें साथ दे रहा है। अगर हमें ये नशा चढ़ जाए तो छोटी मोटी बातों की चिंता होगी नहीं, सब निश्चिंता में बदल जाएगा, और जितने हम निश्चिंत होंगे उतना सब कुछ ठीक रहेगा। ये भी डीप फिलोसोफी, सभी ध्यान रखें, जितना हम निश्चिंत होंगे सब कुछ अच्छा रहेगा। तो सब कुछ तेरा करेंगे और बेफिक्र बादशाह बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे सभी। चिंताएं नहीं, पर चिंताएं तो होती हैं। क्या करेंगे, ड्रामा के ज्ञान का बहुत अच्छा यूज करना है। जब आप यहां मधुबन में हैं तो सभी भाई बहने अपने से बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। पहला चिंतन मैं आपको बताना चाहता हूं, संगम युग पर हम और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप चेक करेंगे अपने को तो आपके ख्याल में आ जाएगी बात कि जो पुरुषार्थ अब हम कर रहे हैं हम चाहें तो उससे चार गुना कर सकते हैं। सब देख लें अपने जीवन को, कहां कहां अच्छे से अच्छा अभ्यास किया जा सकता है। सबके पास टाइम है, सबके पास संपूर्ण ज्ञान है, जरूरत होती है एक सुंदर प्लानिंग की, प्लानिंग पुरुषार्थ की, प्लानिंग करें सभी अपनी। मैं थोड़े से मैं आपको बता दूं एक चीज, जितने तरह के कर्म आप करते हैं शायद दिन में उसकी लिस्ट बनाओ, 12 लिख सकते हैं आप, और हर कर्म में अलग अलग अभ्यास सेट कर लो। स्नान करेंगे तो ये अभ्यास करेंगे, भोजन बनाएंगे तो ये अभ्यास करेंगे, खाएंगे तो ये अभ्यास करेंगे, बाइक है स्टार्ट करेंगे तो ये अभ्यास करेंगे, ऑफिस जाएंगे तो ये करेंगे, घर में और काम है कपड़े धोने हैं तो ये करेंगे, मार्केट जाना है तो ये अभ्यास करेंगे। तैयार करो एक लिस्ट, इससे पुरुषार्थ सहज हो जाता है। तो बाबा हमें साथ दे रहा है, मैं चाहूंगा हम सब एक अभ्यास कर लें, और जो अभ्यास सबको रोज करना है मिनिमम एक बार, दो बार करेंगे तो बहुत अच्छा। रेड लाइट करो, सभी फील करें अपने को एक सेकंड में हम आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हैं। चारों ओर सफेद प्रकाश है, ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने बाप दादा खड़े हैं, मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, अब बाबा ने अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। ओम शांति। ये अनुभूति बढ़ाते चलें, इस फीलिंग के साथ कि बाबा आवाज दे रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो, डोंट वरी, चिंता नहीं, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। समा जाए ये बात, मैं बाबा की एक बात सबको याद दिला दूं, शायद ही आप में से किसी को याद हो। बाबा विनाश काल का सारा चित्र खींच चुके हैं हमारे सामने, क्या क्या होगा उसमें। एक बात, अंत में हर आत्मा पूरी निराधार हो जाएगी, अकेले, हर व्यक्ति को अकेला होना है अंत में। अब आप बच्चों की चिंता न करना, अपनी करना। माताएं सोच रही हमारे बच्चे अकेले अकेले हो जाएंगे, हर व्यक्ति मेरे बच्चे हैं ये तो निकालना पड़ेगा मन से, सब तेरे हैं, तुमने हमारे पास भेजे थे पालना करने के लिए, हमने कर दी। बहुत चिंता करने की आदत, बहुत अटैच रहने की आदत, मेरे बच्चे वही करें जो मैं चाहूं, ये नहीं। फ्री छोड़ दो उनको, बड़े हो गए ना, 30 साल के 35 साल के, फ्री, अब तुम अपने भाग्य का निर्माण करो, कमाओ खाओ मौज करो। जो फिर ही नहीं कर पाते, जो बंधे रहते हैं, वो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने को फ्री करो। माता आई एक मेरे पास, कहा मुझे अपना योग का चार्ट 8 घंटे करना है। मैंने कहा 8 घंटे करोगी माताएं? कहा बिल्कुल करूंगी। कितना हो गया? 4-5 घंटे होता है। मैंने कहा बच्चे? कहा नहीं, मेरे को 2 बच्चे हैं, बड़े हो गए 30 साल। मैंने उन्हें कहा मेरा काम पूरा हो गया, तुम्हारी शादी हो गई, एक एक घर दे दिया उनको, तुम संभालो, मैंने एक कमरा ले लिया है बस, अब मैं अकेली, मेरे काम पूरे हो गए सब, मुझे न पूछना कुछ। मैं उसको देखने लगा, माताएं कमाल की है। क्या छोड़ दिया तुमने? कि नहीं बस मैं ऊपर रहती हूँ, वो नीचे, ठीक है बस मैं बाबा के साथ। मैं उसको देखने लगा कि देखो ये माता कितनी स्ट्रांग और कितनी डिटेच है। कहा मैं उसके किसी काम में जाती ही नहीं, अब तुम बड़े हो गए, बुद्धिमान हो, अपना करते रहो। ये एक समझदारी है ना, है या नहीं? चिपके रहना कष्ट होगा, इसलिए जो जितना देह से डिटैच होते जाएंगे वो संबंधों से भी डिटैच होते जाएंगे। डिटैच होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आप रूखे बन जाएंगे, उन्हें पूछेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं, प्यार बहुत रहेगा। देखो बाबा की महावाक्य याद करो, जो जितना देह से न्यारे वो उतने ही विश्व के प्यारे। तो बच्चों के तो प्यारे आप ही हो जाएंगे ना। डिटैच का अर्थ लोग गलत समझते कि सर सूखे हो गए, वैरागी हो गए, अब किसी कोई मतलब नहीं, ये नहीं होता इसका अर्थ। देह से डिटैच, ये देह अलग मैं अलग। प्रैक्टिस करेंगे सभी, 2 चीजों पर मैं आपका ध्यान देना हूं जिनकी प्रैक्टिस बहुत बहुत करनी है सबको। साक्षी भाव, ड्रामा के ज्ञान की आप 10 पॉइंट निकाल सकते हैं, मैं अभी नहीं निकालूंगा, और साक्षी होने की प्रैक्टिस बढ़ाएं। और दूसरी चीज, बहुत सुंदर धारणा है ये हर एक के जीवन की, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, उसे स्वीकार करते चलें, क्योंकि कुछ भी वो नहीं होगा जो मनुष्य चाहेगा। हम जो चाहेंगे वही हो नहीं, अब तो वो होगा जो प्लान है संसार के लिए। खेल समाप्त होगा, सब जाएंगे, सबको जाना है। जाना है या नहीं? माताएं सोचती पहले हम जाएं, बच्चे बाद में जाएं। जाएंगे बच्चे या नहीं? अब उनकी अपनी भी तो कामना होगी ना, भगवान से हमें मुक्ति चाहिए, घर ले चलो, उन्होंने भी तो भक्ति में बहुत कुछ कहा होगा उसे या नहीं? जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना है, आदत बनाएं। शहर के शहर सीधे के सीधे जमीन में धंस जाएंगे, ये सुनाई देगा। सागर में इतनी बड़ी सुनामी आएगी, बिल्कुल आप समझ लें बॉम्बे से सूरत तक का इलाका सब अंदर चला जाएगा, साफ, साउथ का कुछ भी बचेगा नहीं, क्योंकि धरती में बहुत भयानक परिवर्तन होने हैं, प्रकृति में विस्फोट होंगे। मनुष्य ने भी तो विस्फोट किया है ना प्रकृति में बहुत, अब प्रकृति विस्फोट करेगी। इसलिए जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना ही है। अभी से संकल्प तेज कर लो, ये अभी से आदत डालो, जो कुछ हो रहा उसे स्वीकार करते चलें। साक्षी भाव, ज्ञान योग की सबसे ऊंची स्थिति साक्षी। साक्षी माना, देखो बस इतना ही याद रखना बाबा के बात, बाबा के महावाक, जैसे मैं ऊपर बैठकर संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो। देखो बाबा ने ये विनाश कितनी बार देखा होगा, बोलो हैं? थोड़ा सा संख्या दे दो अनगिनत में से, मान लो 10,000 बार देखा है, अनगिनत में से 10,000 ले लें, तो इस बार देखना उसके लिए कैसा होगा? कहेगा ना कल की बात है, जो मुरली में कहते हैं ना बाबा, कल स्वर्ग बनाकर गया था, उसको लगता तो ऐसा ही है ना कि अभी तो गया था, वहां तो सूरज है नहीं ऊपर, फटाफट टाइम बीतता है, कल ही तो तुम्हें स्वर्ग बनाया था, क्या कर दिया तुमने आज? और हमने ये विनाश कितनी बार देखा? हमने भी देखा है ना, फिर देखना सहज हो जाएगा। अभी से अपने को मजबूत करें, अभी बेफिक्र बादशाह बनेंगे कि ये सब कुछ हमारे लिए हो रहा है, स्वर्ग बना रहा है बाबा, आज भी था, ऐसी दुनिया जहाँ सुख चैन होगी, दुख का नाम निशान नहीं होगा, बाबा तुम्हारे लिए बना कर जाता है। तो साक्षी होने में तीन बातें याद रखेंगे, नोट कर लो लिखने वाले, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, ये सब बाबा के महावाक्य हैं। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। दूसरा, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, इसलिए यहां किसी का कोई दोष नहीं है। तीसरा, सभी आत्माओं का अपना अपना भाग्य है, सबकी कर्म कहानी अपनी अपनी है। इन तीनों पे आप चिंतन रखें, प्रैक्टिस में लाएं, चित शांत रहेगा, चिंताएं खत्म हो जाएंगी, तब बाबा के साथ का अनुभव भी बहुत अच्छा होता रहेगा। तो सभी अपने को बहुत स्ट्रांग करेंगे, छोटी मोटी चीजें जो अब जीवन में होती हैं, उसमें बेफिक्र बादशाह होकर रहने की प्रैक्टिस करें। बीमारी हुई छोटी मोटी, बहुत परेशानी नहीं, ठीक है, आई है चली जाएगी। एक बात मैंने बहुत पहले बाबा के मुख से सुनी थी, जो आत्माएं अशरीरी होने का बहुत अभ्यास करती हैं, उन्हें कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं देता, उन्हें पीड़ा नहीं होगी, हाय हाय नहीं, दर्द है बहुत लेकिन है बस, जैसे उनको नहीं है शरीर को है, ऐसी फीलिंग होगी। छोटी मोटी चीज घर में और कोई नुकसान हो जाता है, ज्यादा परेशान नहीं होंगे, बाबा हमारे साथ है, वो हमें खिलाता रहेगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, ओम शांति भवन में बाबा की मुरली चल रही थी तब भी कही, साकार में भी कही, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं, वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। सोच लो कितनी अच्छी बात है, कितना सुंदर वचन है भगवान का। तो ओम शांति भवन में मुरली चल रही थी, भाई लोग आगे बैठे थे, बाबा ने एक और बात इसमें जोड़ दी थी कि तुम्हें कोई कमी नहीं पड़ेगी, बाप दादा खिलाते पिलाते रहेंगे, पालना करते रहेंगे। तो आगे जो एक भाई बैठा था उसने पूछा कि बाबा हम तो ज्ञान में हैं, हमारे बच्चे तो नहीं है, उनका क्या होगा? उत्तर सुनो बाबा का। बाबा ने कहा उनकी भी सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी, इच्छाएं नहीं। इच्छा तो उन्हें शराब पीने की भी हो सकती है, वो नहीं, आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी। तो बाबा के हम बन गए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी भी देखो नेपाल में बाबा के सब बच्चे सेफ, सारे मकान सेफ, बाबा के बच्चों के मकान भी सेफ, केवल एक सेंटर की टंकी टूटी, डरती ही ली, टंकी जल्दी टूट जाती है, पानी आधा भरा हो ना तो जब वो जोर लगाएगी ना इधर उधर तो तोड़ दिया उसको। क्यों ये होता है, एक रहस्य सुन लें आप। कुछ साल पहले रशिया के वैज्ञानिकों को एक बहुत अच्छा काम दिया गया कि जब भूकंप आदि होते हैं तो ये जो पवित्र स्थान हैं दुनिया में, चर्च मंदिर आदि, ये सेफ रहते हैं। क्यों, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उन्होंने रिसर्च करके बताया कि इन सब से जो पवित्र वाइब्रेशंस फैलते हैं वो विनाश की तरंगों को पीछे कर देते हैं। हम सभी को नशा रहना चाहिए, जिस स्थान पर एक पवित्र आत्मा और योगी आत्मा रहेगी वहां आसपास भी विनाश नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा, विनाश तो होना है पर सेफ होते रहेंगे सब। हमारे वाइब्रेशंस दूसरों के लिए भी छत्र छाया का काम करेंगे। तो अपनी स्थिति को सभी को पावरफुल बनाना है। कुछ अच्छे अच्छे संकल्प आपको मिलते रहेंगे आगे चलकर। देखो बाबा ने बताया था विनाश होगा, लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, ये मरा, वो मरा, और आप कहेंगे क्या, वहां ड्रामा नहीं, वहां ना कह देना, उस टाइम लोग मारने लगेंगे आपको। आप कहेंगे मुक्ति को गया, उसकी इच्छा पूरी हुई जन्म जन्म की। ये एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा उस समय कि विनाश नहीं हो रहा है, एक नए संसार के आगमन की तैयारी हो रही है। जैसे नया मकान बनाने के लिए हम अपने पुराने मकान को तोड़ देते हैं ना, तो ये नया स्वर्ग आने के लिए ये सब काम हो रहा है। हमें ये संकल्प रहेगा, अपने संकल्पों को हमें चेंज करना होगा। मर रहे हैं, मर थोड़ा ही रहे, उनके शरीर धरती को उपजाऊ बनाएंगे और आत्माएं मुक्ति को जाएंगी, दोनों का फायदा हो रहा है। शरीरों को बाबा यूज कर लेता है, कितनी सुंदर प्लानिंग है भगवान की, कि शरीर भी बेकार न जाए, खून भी काम आ जाए। तो हम सभी अपने महान कर्तव्यों को याद रखेंगे, चिंतन करेंगे। आप में से कई आत्माएं तैयार हो जाएं कि मुझे संसार को बहुत कुछ देना है, देने वाले बनेंगे, बनेंगे तो बाकी सब चीजें स्वतः ही हल्की हो जाएंगी। हम इतने सेवा में लग जाएंगे संसार को देने में, बाबा क्या करते मुरलियों में, कि बाबा तुम्हें इतना बिजी कर देगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा विनाश कब हो गया। इसलिए अपने को तैयार करें। टीवी आदि नहीं चलेंगी तब, साक्षात्कार हुआ करेंगे। अभी भी देखो नेपाल में हुआ, कल एक लेख डाला एक बहुत अच्छे पत्रकार ने, नेपाल की सरकार का हाल बताया कि भारत का जब ये ग्रुप वहां पहुंच गया होम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो होम मिनिस्टर ने 10 जिलों के कलेक्टर्स को फोन लगाने में ही समय बिता दिया, मतलब उसको फोन नंबर ही नहीं मिल रहे थे उनके, होम मिनिस्टर के पास फोन नंबर ही नहीं थे कलेक्टर्स के, और जब उसने ढूंढ डांट के फोन नंबर निकाले तब तक नेटवर्क जा चुके थे क्योंकि वहां टूट फूट गए थे सब। फिर वो सैटेलाइट फोन थे, वो वहां किसी ऑफिसर को चलाने नहीं आते थे, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाया। अब क्या करें, भारत ने जो मदद भेजी क्या करें, लोग कहां जाएं, उन्हीं की सरकार से काम कराना होगा ना मिलके। तो ऐसा हाल विनाश काल में ये सभी साधन रह जाएंगे, न मोबाइल चलेगा, न टीवी, न इंटरनेट, न लाइट होगी, न इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, सब खत्म। तब होगा हर मनुष्य अकेला। और काम आएगा, काम आएगा, ठीक बोल रहे, काम आएगा अपनी योग युक्त स्थिति। बाबा के कार्यों में हमने कितना सहयोग दिया वो पुण्य, और टोटल हमारा पुण्यों का खाता, हमारे पुण्यों का खाता हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड रहेगा। जिसके पाप बहुत होंगे उनका हाल ये होगा कि पानी भरा पड़ा है लेकिन वो पी नहीं पा रहे हैं, अन्न है लेकिन वो खा नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना है पुण्य बढ़ाने पर, योग युक्त स्थिति पर, बाबा के कार्यों को सफल करने पर। ठीक है, बेफिकर बादशाह बनना है, मास्टर सर्व शक्तिवान की बहुत गुड फीलिंग, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ इसकी बहुत गुड फीलिंग, मैं पूर्वज हूँ मास्टर दुखहर्ता हूँ, मास्टर मुक्तिदाता हूँ, ये सब फीलिंग्स बढ़ानी है ताकि हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार छोटे से निकलकर विशाल हो जाएं। और तब जब ये खेल समाप्त होने पर होगा, हम एक नेचुरल स्थिति में आ जाएं दाता की, मुक्ति दाता, मास्टर दुखहर्ता, सबकी पालना करने वाले, सबको सहारे का अनुभव कराने वाले, ये सब अभी से सुंदर अभ्यास करने हैं। तो चिंतन करना मधुवन में बहुत अच्छा चांस मिला है ना, सबको मिलते ही नहीं थे कभी, अभी सब आने लगे, बत्तियां चलेंगी बहुत। चिंतन, योग के साथ चिंतन, हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, हम अपने श्वास संकल्प तन मन धन सबको सफल करें, कैसे करें, क्या करें, इसी कार्य व्यवहार में रहते हुए कौन कौन सा और अच्छा अभ्यास करें, इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए हम अच्छे से अच्छी क्या साधना करें, यहाँ बैठकर एक प्लानिंग करना, स्व प्लानिंग मनुष्य की उन्नति का सबसे अच्छा साधन है। बहुत अच्छा आप सबने किया, उड़ते रहना और इन वाइब्रेशंस को अपने साथ ले जाकर सारे फरीदाबाद में फैला देना। ठीक है, ओम शांति।
शांति। सभी देह देह के संबंध सबसे मुक्त हो गए ऐसे अनुभव हो रहा है, आप सब भी ऐसे अनुभव करते होंगे जरूर, और यही अनुभव को आगे बढ़ाते रहना, यहीं छोड़कर नहीं जाना। इतनी मेहनत करके वरिष्ठ भाई और बहनें जो आपके लिए ज्ञान का भोजन तैयार करके लाते, वैरायटी भोजन ज्ञान का, बहुत अच्छा अच्छा भोजन, जैसे अच्छे अच्छे भोजन बनाने वाले होते हैं वैसे यहाँ मधुवन में क्या मिलता है, ज्ञान का भोजन जो अच्छा अच्छा बनाते वैरायटी रूप से वो हमें मिलता रहता है, जो आत्मा में शक्ति भर देता है। तो आज विशेष बेफिकर बादशाह